ओम शांति। अव्यक्त मुरली 27/12/87। मुख्य हेडिंग है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां। बेफिक्र बादशाह बनाने वाले माया के तूफानों से पार ले जाने वाले बाप दादा अपने निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों प्रति बोले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। निश्चय की विशेष निशानियां, पहली जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। दूसरा, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। तीसरा, अपने श्रेष्ठ भाग्य श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। चौथा, क्वेश्चन समाप्त हर बात में बिंदु बन बिंदु लगाने वाले होंगे। निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे, अर्थात बार बार स्मृति में लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बादशाह हूं ये कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित हैं। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बन जाती है, चाहे दुख की चाहे सुख की, उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं। बार बार मेहनत नहीं करते मैं सुखी हूँ व मैं दुखी हूँ। बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः सहज होता है। बाबा कहते अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थितियां प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा, बाप द्वारा मिलता है। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सद्गुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना। और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी अचल अडोल नहीं रह सकता। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए हुए हैं, तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती। परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर व अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह हैं, क्योंकि फिक्र होता है कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण। अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो फिक्र किस बात का रहा। छठा पॉइंट है, बाबा कहते निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित, सर्ववंश सहित समर्पित, चाहे देहभान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, सर्ववंश में ये सब आ जाता है। सर्वंश समर्पित का सर्वंश त्यागी एक ही होता है, एक ही बात है। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए व सेवा केंद्रों पर बैठ गए। बाबा कहते ये भी एक सीढ़ी है जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश अर्पित यह सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित। तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना। बाबा कहते वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है, यह भी कभी सुनाएंगे। सातवीं पॉइंट है, बाबा कहते निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा, हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित यह हर समय अनुभव करेगा। आठवीं पॉइंट है, बाबा कहते वह सदा स्वयं भी नशे में रहेगा और उनके नशे को देख दूसरों को भी यह रूहानी नशा अनुभव होगा, औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वालों के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी? पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि, बुद्धि पर ध्यान देना। जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतना उतनी निर्माण, नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी तो निर्माण भी होंगे, निर्माण भी होंगे। जहां ये विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। निमित्त, निर्माण और निर्माण। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता होगी। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप, मैं नहीं। उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाब ने सदैव पहले जगदम्बा व बच्चों को रखा, मेरे से भी तीखी जगदम्बा है, मेरे से भी तीखे ये बच्चे हैं, यह उदारता की भाषा है। बाबा कहते और जहां उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहां ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते, वह मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप ही हो जाता है, लेकिन इच्छा वाला नहीं। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा, ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। बाबा कहते निश्चय बुद्धि तो सभी होना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है कि निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, ऐसे यहां भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है? पहले उड़ाता है, फिर फेंकता है। तो यह तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति यह मेरी तरफ होने वाले नहीं है। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिरती कला में ले आती है, चतुर है। तो निश्चय बुद्धि की नजर त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो यह माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम हैं, हिलते ज्यादा हैं। हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है, तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा भाषण करेंगे, अच्छा भी है निश्चय में रहना। लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है, तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान ना देवे व व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया के तूफान आए। जो चाहना रखते हो वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण ना हो। ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, वह याद रहता है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। बाबा कहते हैं, अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। समर्थ के बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो, हद का मानशान मैपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आते हैं। तो निश्चय का अर्थ ये नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? वह नशा, वह स्वमान समय पर अनुभव हो, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कोई पेपर है ही नहीं और कहें मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो कोई उसको मानेगा? सर्टिफिकेट चाहिए ना। बाबा कहते कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वैल्यू नहीं होती है। पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले बाप से, परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजय। समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना? जैसा समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे, सिर्फ अपना मन खुश ना हो लेकिन लोग भी खुश हों, सभी अनुभव करें कि हाँ यह नशे में रहने वाली आत्मा है, सिर्फ मन पसंद नहीं लेकिन लोग पसंद, बाप पसंद, इसको कहते हैं विजय। अच्छा, सर्व निश्चय बुद्धि विजय रत्नों को, सर्व निश्चिंत बेफिक्र बच्चों को, सर्व निश्चित विजय के नशे में रहने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा अचल अडोल एकरस स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आगे विदेशी भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहते अपने को समीप रत्न अनुभव करते हो। समीप रत्न की निशानी क्या है? वह सदा सहज और स्वतः ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा, गुण मूरत सेवाधारी अनुभव करेंगे। समीप रत्न के हर कदम में यह चार ही विशेषताएं सहज अनुभव होंगी, एक भी कम नहीं होगी। ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो या दिव्य गुणों की धारणा में कमजोर हो, वह सब में सदा ही सहज अनुभव करेगा। समीप रत्न किसी भी बात में मेहनत नहीं अनुभव करेंगे लेकिन सहज सफलता अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा बच्चों को संगम युग पर मेहनत से ही छुड़ाते हैं। 63 जन्म मेहनत की है ना, चाहे शरीर की मेहनत की चाहे मन की मेहनत की। बाप को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते रहे। तो यह है मन की मेहनत की, और धन की भी देखो, जो सर्विस करते हो, जिसको बाप दादा नौकरी कहते उसमें भी देखो कितनी मेहनत करते हो, उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। और अभी आधा कल्प के लिए ये नौकरी नहीं करेंगे, इससे भी छूट गए जाएं ना, लौकिक नौकरी करेंगे ना भक्ति करेंगे, दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। बाबा कहते अभी भी देखो, चाहे लौकिक कार्य करते भी हो लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते हुए भी अंतर लगता है ना। अभी यह लौकिक कार्य करते भी डबल लाइट रहते हो, क्यों? क्योंकि लौकिक कार्य करते भी यह खुशी रहती है कि यह कार्य अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं। अपने मन की तो इच्छाएं नहीं है ना, तो जहां इच्छा होती है वहां मेहनत लगती है। अभी निमित्त मात्र करते हो, क्योंकि मालूम है कि तन मन धन तीनों लगाने से एक का पदम गुना अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। फिर जमा किया हुआ खाते रहना। बाबा कहते, पुरुषार्थ से योग लगाने का, ज्ञान सुनने सुनाने का, इस मेहनत से भी छूट जाएंगे। कभी कभी क्लासेस सुनकर थक जाते हैं ना, वहां तो लौकिक राजनीतिक पढ़ाई भी जो होगी नहीं, वह भी खेल खेल में होगी। इतने किताब नहीं याद करने पड़ेंगे, सब मेहनत से छूट जाएंगे। कईयों को पढ़ाई का भी बोझा होता है। संगम युग पर मेहनत से छूटने के संस्कार भरते हो। चाहे माया के तूफान आते भी हैं, लेकिन यह माया से विजय प्राप्त करना भी एक खेल समझते हो, मेहनत नहीं। खेल में भी क्या होता है, जीत प्राप्त करना होता है ना, तो माया से भी विजय प्राप्त करने का खेल करते हो। खेल लगता है ये बड़ी बात लगती है। बाबा कहते, जब मास्टर सर्वशक्तिवान स्टेज पर स्थित होते हो तो खेल लगेगा, और ही चैलेंज करते हो कि आधा कल्प के लिए विदाई लेकर जाओ, तो विदाई समारोह मनाने आती है, लड़ने नहीं आती। बाबा कहते, विजयी रत्न हर समय हर कार्य में विजय है, विजयी होना है, विजयी होना। बाबा पूछ रहे हैं विजयी होना, तो वहां जाकर भी हां जी करना, फिर भी अच्छे बहादुर हो गए हैं। पहले थोड़े जल्दी घबरा जाते थे, अभी बहादुर हो गए हैं, अभी अनुभवी हो गए हैं, तो अनुभव की अथॉरिटी वाले हो गए, परखने की भी शक्ति आ गई है, इसलिए घबराते नहीं हैं। अनेक बार के विजयी थे, हैं और रहेंगे, यही स्मृति सदा रखना। अच्छा, विदाई के समय दादियों से, दादी जानकी बंबई से 3-4 दिन का चक्र लगाकर आई हैं। बाबा कहते, अभी से ही चक्रवर्ती बन गई, अच्छा है। यहां भी सेवा है, वहां भी सेवा की, यहां रहते भी सेवा करते और जहां जाते वहां ही सेवा हो जाती। सेवा का ठेका बहुत बड़ा लिया है, बड़े ठेकेदार हो ना, छोटे छोटे ठेकेदार तो बहुत हैं, लेकिन बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना पड़ता है। बाबा आज मुरली सुनते बहुत मजा आया। बाबा कहते, है ही मजा, अच्छा है। आप लोग कैच करके औरों को क्लियर कर सकते हो, सभी तो एक जैसे कैच कर नहीं सकते। जैसे जगदम्बा मुरली सुनकर क्लियर करके सहज करके सभी को धारण कराती रही, ऐसे अभी आप निमित हो। कई नए तो ये समझ भी नहीं सकते हैं, लेकिन बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं देखते, जो बैठे हैं सभा में उन्हें ही नहीं देखते, सभी को सामने रखते हैं। फिर भी सामने अनन्य होते हैं तो उन्हों के प्रति निकलता है। आप लोग तो पढ़कर भी कैच कर सकते हो। अच्छा, पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहते, स्वयं को स्वराज्य अधिकारी राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो, स्वराज्य मिली है व मिलना है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजयोगी आत्मा सदा ही स्वराज्य की अधिकारी होने के कारण शक्तिशाली है। राजा अर्थात शक्तिशाली, अगर राजा हो और निर्बल हो तो शक्तिहीन को राजा कौन मानेगा। प्रजा उनके ऊपर और ही राज्य करेगी। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा शक्तिशाली आत्मा ही कर्म इंद्रियों पर अर्थात अपने कर्मचारियों के ऊपर राज्य कर सकती है, जैसे चाहे चला सकती है। नहीं तो प्रजा राजा को चलाएगी। प्रजा राजा को चलाए तो प्रजा ही राजा हो गई ना। बाबा कहते नियम प्रमाण राजा प्रजा को चलाता है। अगर प्रजा का राज्य है तो राजा नहीं कहेंगे, प्रजा का प्रजा पर राज्य कहेंगे। किंतु बाप आकर राजयोगी बनाता है, प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं सिखाता है। तो सभी राज्य अधिकारी होना, कभी अधीन कभी अधिकारी, ऐसे तो नहीं, सदा अधिकारी। एक भी कर्म इंद्रिया धोखा ना दे, इसको कहते हैं राजयोगी व राज्य अधिकारी। तो सदा इस स्वमान में स्थित रहो कि हम अधिकारी हैं, अधीन होने वाले नहीं। यह है ईश्वरीय नशा। यह नशा सदा रहता है या कभी कभी? बाबा कहते कभी है कभी नहीं, ऐसा ना हो, क्योंकि अभी के संस्कार अनेक जन्म चलेंगे। अगर अभी के संस्कार सदा के नहीं हैं, कभी कभी के हैं, तो अनेक जन्म में भी कभी कभी राज्य अधिकारी बनेंगे। सदा राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली के नजदीक रहने वाले। तो संस्कार भरने का समय अभी है, जैसा भरेंगे वैसा चलता रहेगा। तो अटेंशन किस समय देनी होता? जब रिकॉर्ड भरते व टेप भरते हैं तो अटेंशन भरने के समय देते हैं, चलने के समय तो चलता ही रहेगा। लेकिन भरने के समय जैसा भरेंगे वैसा चलता रहेगा, तो भरने का समय अभी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर अटेंशन देना चाहो तो भी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि भरने का समय समाप्त हो जाएगा, फिर जो भरा वह चलता रहेगा। अच्छा, दूसरी पॉइंट है, बाबा कहते सदा अपने को स्वदर्शन चक्रधारी आत्माएं अनुभव करते हो। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात जहां स्वदर्शन चक्र है वहां अनेक माया के चक्र समाप्त हो जाते हैं। तो माया के अनेक चक्रों से बचने वाले अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी, जहां माया के चक्र हैं वहां स्वदर्शन चक्र नहीं, क्योंकि स्वदर्शन चक्र शक्तिशाली है। इस शक्तिशाली चक्र के आगे माया स्वतः ही भाग जाती है। तो ऐसे बने हो, स्वप्न में भी माया का चक्कर वार ना करे। पहले भी सुनाया है कि जो बाप के गले का हार है वे कभी माया से हार खा नहीं सकते। अगर माया से हार खाते हैं तो बाप के गले का हार नहीं बन सकते। तो गले का हार हो या हार खाने वाले हो, बाप ने सभी बच्चों को महावीर विजयी बनाया, एक भी कमजोर नहीं। तो महावीर की निशानी है यह स्वदर्शन चक्र सदा स्वदर्शन चक्र चलता रहे तो स्वतः सहज विजयी रहेंगे। यह बाप की विशेषता है जो सभी को चक्रधारी बनाते हैं, सभी को श्रेष्ठ भाग्यवान बनाते हैं। बाप किसी को भी कम नहीं बनाते, बाप एक जैसा सभी को मालामाल बनाते हैं। बाप एक ही समय सभी को सब खजाने देते हैं, अलग नहीं देता। लेकिन नंबर क्यों बनते हैं? लेने वाले नंबरवार बन जाते हैं, देने वाला नंबरवार नहीं बनाता। सब बाप के स्नेही सहयोगी तो हो ही, लेकिन शक्तिशाली बनने में अंतर पड़ जाता है। बाप दादा तो सबको महावीर रूप में देखता है। अच्छा, सदा बाप के दिल में रहने वाले और सदा बाप को दिल पर बिठाने वाले, सदा बाप के दिल में रहने वाले ही निरंतर योगी हैं। तीसरी पॉइंट है, बाबा कहते हैं, सदा अपने को राज ऋषि समझते हो। एक तरफ है राज्य, दूसरे तरफ है वैराग, दोनों का बैलेंस हो। बेहद का वैराग विराग नहीं लेकिन प्राप्ति स्वरूप बना देता है, क्योंकि पुरानी दुनिया से वैराग लाते हो और नई दुनिया के मालिक बन जाते हो। तो नाम वैराग है लेकिन मिलती प्राप्ति है। बाबा कहते हैं छोड़ने में ही लेना है, एक देते हो और पदम लेते हो। तो बेहद का वैराग राज्य भाग्य दिलाने वाला है। एक जन्म के लिए वैराग अनेक जन्मों के लिए सदा श्रेष्ठ भाग्य। ऐसे राजऋषि हो, राजऋषि कुमार और कुमारियों का ही गायन है। ऐसी राजऋषि आत्माओं को विश्व की आत्माएं दिल से प्यार करती हैं। चैतन्य से भी ज्यादा आपके जड़ चित्रों को प्यार से याद करते हैं, क्योंकि त्याग का भाग्य प्राप्त हुआ है। तो ऐसे राजऋषि आत्माएं हैं, इस नशे में सदा रहो। अच्छा, ओम शांति।